समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर शुरू करते हैं आज सवेरे कार्यक्रम की। तो हम एक बार फिर हाजिर हैं देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी लेकर जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संघ के साथ मैं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेणु कटारिया। रेणु, आपको भी मेरा नमस्कार।
Namaskar Mukesh and a very good morning and a warm welcome to all our listeners tuned into Akashvani FM Gold on 100.1 megahertz and the Akashvani network. And dear listeners, you are listening to Aaj Savere, our exciting daily news magazine program in which over the next half an hour we will bring you the latest from national and international news, updates from metro cities and fascinating historical tidbits about this day, that is the 17th of December. So Mukesh, let's get started with today's top headlines.
बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में राजस्थान सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर 46,300 करोड़ रुपए की ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जलापूर्ति से जुड़ी 24 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित रहेंगे।
The Rajya Sabha will today resume the special discussion on the glorious journey of 75 years of the Constitution of India. Prime Minister Narendra Modi scheduled to respond to the debate in the Upper House today. The two-day special debate began in the Upper House yesterday. Initiating the discussion, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman paid tribute to the members of the Constituent Assembly with special recognition to its 15 women members. Mrs. Sitharaman said, "It is time to reaffirm commitment to build India that will uphold the spirit enshrined in the sacred document." The minister also targeted the opposition on the issues of freedom of expression and protecting the constitution. She alleged that Congress presently kept amending the constitution to help a family and protect those in power instead of strengthening democracy.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कल छत्तीसगढ़ के रायपुर में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गृहमंत्री ने सभी सुरक्षा बलों और एजेंसियों से मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद पूरी तरह समाप्त करने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पिछले एक वर्ष में नक्सलवाद पर काफी नियंत्रण कर लिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। गृहमंत्री ने बीजापुर जिले में गुंडम अग्रिम परिचालन बेस पर सुरक्षा बलों की तैयारियों की समीक्षा भी की।
Two bills related to one nation, one election are scheduled to be introduced in the Lok Sabha today. Union Law Minister Arjun Ram Meghwal will introduce the Constitution 129th Amendment Bill and the Union Territories Laws Amendment Bill in the lower house. The two bills have been listed in the business of the house. Recently, the government accepted the recommendations of the high-level committee constituted for exploring the idea of one nation, one election in the country. Once the legislation becomes an act, it will be implemented in two phases. In the first phase, Lok Sabha and Assembly elections will be held simultaneously, while local bodies' elections like panchayats to be conducted within 100 days of general elections. Meanwhile, BJP has issued the three-line whip to all its Lok Sabha MPs to be present in the House today.
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में चरणबद्ध कार्रवाई योजना ग्रैप के चौथे चरण को लागू कर दिया है। वायु प्रदूषण में गंभीर वृद्धि के कारण ये निर्णय लिया गया। आयोग ने अपनी उप समिति की आपात बैठक के बाद ये निर्णय लिया है। इस बीच कल रात 10 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से अधिक हो गया। वायु गुणवत्ता में और अधिक गिरावट को रोकने के लिए उप समिति ने पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से ग्रैप का चौथा चरण लागू करने का निर्णय लिया।
Moving on to some news on the climate, Mukesh. In the French island territory of Mayotte on Indian Ocean, hundreds are feared dead after Cyclone Chido wreaked a havoc causing widespread devastation. While officials have confirmed 20 deaths, Mayotte's prefect has warned that the final toll could reach close to 1,000 or even several thousand. We have a report.
The powerful Category 4 storm, with winds reaching 225 kilometers per hour, struck the region on Saturday. It is believed to be the worst to hit the island in 90 years, with waves up to 8 meters high. People are calling for aid as the island, located between Madagascar and the Mozambique coast, is left without power since the cyclone made landfall. French President Emmanuel Macron said he will declare a national mourning period. France's poorest department and the poorest territory in the European Union, Mayotte, is a hotspot for economic migration due to its better standard of living and the French welfare system, drawing people from neighboring countries like Comoros and Somalia. Aishwarya Rainigam, News Desk, Akashwani, Delhi.
और आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है मेट्रो न्यूज का, तो सबसे पहले रेणु आप बताएं चेन्नई की क्या खबरें हैं।
हाँ जी, मेरे पास दो खबरें हैं चेन्नई से। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन सेड दैट इट वाज एनकरेजिंग दैट द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका अनुराग कुमार दसनायके इज एंगेजिंग इन डिस्कशंस विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ तमिल फिशरमैन इन अ ह्यूमैनिटेरियन एंड पीसफुल मैनर एम्फसाइजिंग द नीड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट. He also appealed to the visiting president of the neighboring island nation to consider the release of Tamil Nadu fishermen detained by the Sri Lankan Navy and the return of their seized boats. He said that such a gesture will infuse confidence in these deliberations and mark a constructive step towards fostering stronger ties and a harmonious future between the two nations. And the other news that I have from Chennai Metro is a low pressure area which formed over the Bay of Bengal on Monday is likely to move towards Tamil Nadu coast in the next 2 days. After intensifying, more rains are expected in north coastal districts from Chennai to Nagapattinam and adjoining districts. The Met Department has issued an alert to Chennai, Chengalpet, Thiruvallur, Kanchipuram, Kadalore and Viluppuram districts. Coastal areas have already witnessed excess rains.
और अब चलते हैं मुंबई. महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने टिकट किराए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव सरकार को भेजा है. 2024 का सबसे अधिक मासिक राजस्व 941 करोड़ रुपए होने के बावजूद इसके व्यय में भी वृद्धि हुई है, जिसमें ईंधन की कीमतों में वृद्धि और कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि शामिल है. परिणाम स्वरूप निगम को 11,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, जिसके कारण टिकट की कीमतें बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. मध्य रेलवे ने इस वित्त वर्ष में नवंबर 2024 तक यात्री परिवहन और आय में प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है. मध्य रेलवे ने इस वित्त वर्ष के दौरान यात्री आय के रूप में 4,966 करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 4,699 करोड़ रुपए की आय सृजित हुई थी. और वाधवा पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड ने वाधवन पोर्ट स्किलिंग कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है. इसका उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं को विभिन्न उद्योगों में रोजगार क्षेत्र के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना है. इस कार्यक्रम की शुरुआत जेएनपीए और अन्य के बीच एक समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षर के साथ हुई.
Moving on to Bengaluru, more than half of the metro stations planned along the 36-kilometer Hebbal-Sarajpur corridor will include additional space for parking and commercial development, signaling a significant shift in Namma Metro's approach, which has traditionally been cautious in these areas. This strategic change aims to increase Namma Metro's non-fare revenue and reduce its reliance on state government grants. As per the detailed project report or DPR, approximately 15 lakh square feet of commercial development and around 2 lakh square feet of parking space are planned across 17 of the 28 stations on the corridor, which includes both elevated and underground stations. At select stations, additional built-up areas of up to 1.6 lakh square feet have been designated for non-metro purposes such as shopping malls and office spaces.
और रुख करते हैं कोलकाता की खबरों का। पश्चिम बंगाल अंडा मांस और दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। केंद्र सरकार के हाल ही में प्रकाशित पशुपालन सांख्यिकी आंकड़ों में ये बात सामने आई है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस उपलब्धि पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल ने इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। पश्चिम बंगाल भारत में 12.62% मांस और 9.76% दूध का उत्पादन करता है।
And moving on to Hyderabad Metro, President Draupadi Murmu will be reaching Hyderabad this evening on a 5-day sudden sojourn. The President will reach the Air Force Station Hakimpet this evening. She will reach the Rashtrapati Nilam at Bolaram in Secunderabad by road, and the President's office will function from the Nilayam till 21st of this month. The state government has made elaborate arrangements for the President's visit and stay. More from our correspondent.
President Draupadi Murmu is visiting Hyderabad for the third time for the Southern Sojourn after elected to the highest office of the country. The President of India stays at least once a year in Rashtrapati Nilayam at Bolaram and conducts official business from here. The building of the Rashtrapati Nilayam was constructed in 1860 as the country house of the British resident at Secunderabad, and it became the President's retreat after Hyderabad State's accession to India in 1948. The first President, Babu Rajendra Prasad, had stayed at Bolaram in 1955, and since then every president visited Hyderabad for Southern Sojourn at least for a few days every year. During her week-long visit to Rashtrapati Nilayam this time, President Murmu will award President's Colors to the College of Defence Management, known as CDM, at Secunderabad on Friday. The President will also inaugurate and lay foundation stones to several initiatives taken at the Nilayam during her visit. Besides, the President will meet public representatives, eminent people, artists and leaders of various communities during her Southern Sojourn. Lakshmi, Akashwani News, Hyderabad.
और हैदराबाद के बाद अब आते हैं राजधानी दिल्ली की ओर। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली के सभी प्राथमिक स्कूलों को आज से अगले आदेश तक हाइब्रिड मोड में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस संबंध में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी किया है। निदेशालय ने अपने आदेश में स्कूलों से कहा है कि वे 5वीं कक्षा तक ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करें। दिल्ली में वाहनों के लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटान के लिए 20 दिसंबर से दिल्ली की सभी जिला अदालतों में विशेष सायंकालीन अदालतें आयोजित की जाएंगी। ये अदालतें न्यायालय के सभी कार्य दिवसों पर शाम 5 से 7 बजे तक कार्य करेंगी। इन अदालतों का आयोजन दिल्ली जिला न्यायालय और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से किया जा रहा है। और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी से दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र तत्काल बुलाने को कहा है। उपराज्यपाल ने विशेष सत्र में दिल्ली सरकार की परियोजनाओं से जुड़ी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की 14 लंबित रिपोर्ट को भी सदन में पेश करने को कहा है। रेनू, देश दुनिया के समाचार हो गए और चारों महानगरों और 6 महानगरों के समाचार भी हो गए, और अब बारी है खेल जगत की हलचल जानने की। तो खेल जगत की ताजा तरीन जानकारी लेकर स्टूडियो पहुंच चुकी है हमारी सहयोगी फरत नाज। फरत, आज खेल खबरों की शुरुआत कहां से कर रही हैं?
जी मुकेश, आज खेल खबरों की शुरुआत महिला क्रिकेट से। महिला क्रिकेट में आज नवी मुंबई में दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत का सामना वेस्टइंडीज से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। रविवार को पहले मैच में भारत ने 49 रनों की शानदार जीत दर्ज की थी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 T20 के अलावा 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले जाएंगे। अंतिम T20 मैच बृहस्पतिवार को होगा, जबकि एकदिवसीय मैच 22, 24 और 27 दिसंबर को होंगे। नई दिल्ली में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में औरंगाबाद की युवा निशानेबाज रिया शिरीश तट्टे ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल फाइनल में अपना पहला सीनियर राष्ट्रीय खिताब जीता। रिया ने पंजाब की सिमरनप्रीत कौर बरार को 7-2 से शूट ऑफ में हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पूर्व एशियाई खेल चैंपियन राही सरनोबत ने अब तीसरा स्थान हासिल किया। रजत पदक जीतने वाली सिमरनप्रीत ने इसके अलावा जूनियर महिला खिताब भी जीता। उन्होंने हरियाणा की पायल को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस श्रेणी में रिया को कांस्य पदक मिला है। वहीं स्टावेंजर में अगले साल होने वाले नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में डी कुकेश का सामना दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन से होगा। टूर्नामेंट 26 मई से 6 जून तक खेला जाएगा। कुकेश पिछले साल इस टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रहे थे। नॉर्वे शतरंज में दुनिया के शीर्ष पुरुष और महिला खिलाड़ी 6 खिलाड़ियों के दोहरे राउंड रॉबिन प्रारूप में खेलेंगे। वहीं ओस्लो में पहले वर्ल्डनर कप टेबल टेनिस में टीम एशिया ने टीम वर्ल्ड को 14-0 से पराजित किया। भारत की मनिका बत्रा भी टीम एशिया का हिस्सा थी। टीम में मनिका के अलावा टेबल टेनिस के दिग्गज चीन के मालोंग, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चेन मेंग, दक्षिण कोरिया के शिन योबिन और कजाकिस्तान के किरिल गेरासिमिन को शामिल थे। स्वीडन के महान खिलाड़ी जान ओवे वॉल्डनर ने टेबल टेनिस को शीर्ष वैश्विक खेल बनाने के उद्देश्य से इस टूर्नामेंट की स्थापना की है। वॉल्डनर कप नॉर्वे टेबल टेनिस संघ द्वारा आयोजित एक आमंत्रण टूर्नामेंट था। मुकेश, आज खेल खबरों में बस इतना ही।
धन्यवाद फरहत। और आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे मुकेश कुमार और रेणु कटारिया के साथ। आज सवेरे में वक्त हुआ है मौसम का हाल जानने का, तो रेणु सबसे पहले दिल्ली का मौसम अपने श्रोताओं को बता दें।
बिल्कुल,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर मौसम सामान्य रहेगा। सवेरे के समय घना कोहरा छाया रहा, अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता का रुख करें तो सवेरे के समय धुंध रहेगी और आसमान साफ रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और चलते हैं मुंबई। मुंबई में आज आसमान साफ रहेगा तथा सवेरे के समय कुछ धुंध रहेगी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो ये तो बात हुई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। रेणु, आप बताएं कि चेन्नई और बेंगलुरु तथा हैदराबाद में कैसा रहेगा मौसम?
जी, Chennai is expected to have generally cloudy sky with heavy rain. The minimum temperature was 24 degrees Celsius and the maximum will be around 29 degrees. Bengaluru is expected to have fog or mist in the morning and mainly clear sky later. The minimum temperature was 15 degrees Celsius and the maximum will be around 29 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 13 degrees and a maximum of 28 degrees Celsius. Mukesh?
और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। आज 17 दिसंबर है। आज ही के दिन 1777 में फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया था। सारागोटा में ब्रिटिश जनरल जॉन बरगॉय के खिलाफ कॉन्टिनेंटल आर्मी की भारी जीत की खबर ने बेंजामिन फ्रैंकलिन को अमरीकी विद्रोहियों के लिए फ्रांसीसी समर्थन जुटाने के उनके प्रयासों में नया लाभ दिया। हालांकि जीत अक्टूबर में हुई लेकिन 4 दिसंबर तक फ्रांस तक खबर नहीं पहुंच पाई थी।
जी बिल्कुल। मूविंग ऑन टू द ईयर 1892, ऑन दिस डे दैट इज 17th ऑफ दिसंबर, द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ रिनोन्ड ऑस्ट्रियन कंपोजर फ्रांस शुबर्ट्स अनफिनिश्ड सिम्फनी वॉज कंडक्टेड। इन 1892 ऑन दिस डे द फर्स्ट इश्यू ऑफ द पॉपुलर मैगजीन वोग वॉज पब्लिश्ड। In 1917, an American aviation pioneers, the Wright brothers, first executed a successful 12-second flight on their plane, the Flyer. And moving on to the year 1931, Mukesh, aaj hi ke din, that is 17th of December, the Indian Statistical Institute, that is ISI, was established by renowned scientist and statistician Prasanth Chandra Mahalabonis in West Bengal.
और आज ही के दिन 1928 में क्रांतिकारी भगत सिंह और राजगुरु ने पुलिस सहायक अधीक्षक जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों की लाठी चार्ज का बदला लेने के लिए दोनों क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया था।
इन 1967 ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैरल्ड होल्ट डिसअपीयर्ड व्हाइल स्विमिंग नियर पोर्टसी विक्टोरिया एंड वॉज प्रिज्यूम्ड ड्राउंड।
1991 में आज ही के दिन सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव और रूसी संघ के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन के बीच एक लंबी बैठक के बाद ये घोषणा की गई कि सोवियत संघ आधिकारिक तौर पर नए साल की पूर्व संध्या पर या उससे पहले अस्तित्व में नहीं रहेगा। येल्सिन ने घोषणा की कि अब कोई लाल झंडा नहीं होगा। ये सोवियत संघ के विघटन की ओर ले जाने वाली घटनाओं की एक बहुत बड़ी निराशाजनक परिणति थी। और 2003 में आज ही के दिन J.R.R. टोल्किन के सबसे ज्यादा बिकने वाले काल्पनिक उपन्यासों पर आधारित अंतिम फिल्म द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही और इसने पीटर जैक्सन के लिए बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर सहित 11 अकादमी पुरस्कार भी जीते। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फ्रेंचाइजी में से एक बन गई, जिसने बॉक्स ऑफिस आय और संबंधित मर्केंडाइज में दुनिया भर में अरबों डॉलर कमाए थे।
मुकेश, दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी दैट वी व्हेन वी हर्ड अबाउट दिस मूवी एंड द रिव्यूज, We were also one of those who went and watched this movie in the cinema halls. So in the year 2010, Tunisian street vendor Mohamed Bouzizi immolated himself to protest against harassment by a municipal official. The incident sparked the Arab Spring, a series of anti-government protests and rebellions against the autocratic regimes in the Arab nations on this day. In 2014, the US and Cuba re-established diplomatic relations for the first time since 1961.
और अब याद कर लेते हैं उन महान हस्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि है। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारत के अमर शहीद और प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को। आजादी के आंदोलन को गति देने के लिए धन की तत्काल व्यवस्था की आवश्यकता के मद्देनजर शाहजहांपुर में हुई बैठक के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजों का खजाना लूटने की योजना बनाई थी। इस योजना के अनुसार दल के प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोका और क्रांतिकारी बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद और 6 अन्य सहयोगियों की मदद से सरकारी खजाना लूट लिया। अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाकर राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और अन्य को फांसी की सजा सुनाई थी। और अपने श्रोताओं को बता दें कि आज ही पुण्यतिथि है भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी और पत्रकार भोगराजू पट्टाभि सीतारमैया की। इन्होंने दक्षिण भारत में स्वतंत्रता की अलख जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपने राष्ट्रीय हितों को दूसरे हितों के मुकाबले हमेशा प्राथमिकता दी। सीतारमैया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगियों में से एक थे। जब सन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के निर्वाचन में पट्टाभि सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस से पराजित हो गए, तब महात्मा गांधी ने उनकी हार को अपनी हार कहा था। भारत की आजादी के बाद वर्ष 1952 से 1957 तक वे मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल रहे। सीतारमैया एक लेखक के तौर पर भी जाने जाते थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास भी लिखा था।
And today we are paying tributes to Hari Om Sharan, who was an Indian Hindu devotional singer and lyricist. Most of his career was dedicated to singing devotional songs in praise of Sita, Ram and Hanuman. And as a bhajan singer in the 1970s, he recorded albums such as Premanjali, Pushpanjali and Data Ek Ram. मुकेश, यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, दो ही वॉज अ भजन सिंगर, लेकिन क्या हम ये जानते हैं दैट ही अपियर ब्रीफली इन एन इंग्लिश फिल्म होली स्मोक इन 1999 एज अ सिंगर? नहीं जानते,
बहुत बड़ी बात, नहीं, बिल्कुल नहीं पता।
सो यहाँ पे वाई डोंट वी हियर टू दिस ब्यूटिफुल डिवोशनल सॉन्ग, डिवोशनल सॉन्ग ऑन संग बाय हरिओम शरण, हनुमान चालीसा।
बिल्कुल।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश सिंहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरंगी।
और अब हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा और रंगमंच के दिग्गज कलाकार श्रीराम लागू को। आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी सिनेमा में भी काम किया। श्रीराम लागू ने अपने फिल्मी करियर में 100 से अधिक हिंदी और 40 से अधिक मराठी फिल्मों में काम किया। सिनेमा के अलावा मराठी, हिंदी और गुजराती रंगमंच से जुड़े श्रीराम लागू ने 20 से अधिक मराठी नाटकों का निर्देशन भी किया था। मराठी थिएटर में तो उन्हें 20वीं सदी के सबसे बेहतरीन कलाकारों में गिना जाता था। नट सम्राट नाटक में उन्होंने गणपत बेलवलकर की भूमिका निभाई थी, जिसे मराठी थिएटर के लिए मील का पत्थर माना जाता है। गणपत बेलवलकर का रोल इतना कठिन माना जाता है कि इस रोल को निभाने वाले बहुत से थिएटर कलाकार गंभीर रूप से बीमार हुए हैं। नट सम्राट के रोल के बाद श्रीराम लागू को भी दिल का दौरा पड़ा था। तो श्रीराम लागू का एक उनकी फिल्म का एक डायलॉग सुनते हैं सबसे पहले।
जी,
रात के 2 बजे मेरे कारखाने की तरफ गाड़ियां, क्या मामला है?
सलाम साहब,
कौन है ये सब? ये गाड़ियां यहाँ कौन लेके आया? जवाब क्यों नहीं देते? तुम सब लोग घूंगे हो क्या? ठीक है, मैं देख लेता हूँ।
चरस?
नमक हराम, मेरी आंखों में धूल झोंक कर यहाँ से चाय के डिब्बों में चरस सप्लाई कर रहे हो? ये गैर कानूनी काम करने की इजाजत तुझे किसने दी? मैं तुम सबको कानून के हवाले कर दूंगा, जेल में चक्की पिसवाऊंगा। दरबार
ये सरकार।
धनराज।
यस सर।
अर्जुन सिंह और इन बदमाशों को रस्सी से जकड़ कर यहाँ डाल दो। जीप लेकर शहर में जाओ और पुलिस को लेकर आओ।
और रेनू, पुणे और मुंबई में पढ़ाई करने वाले श्रीराम लागू को एक्टिंग का शौक बचपन से ही था। पढ़ाई के लिए उन्होंने मेडिकल को चुना, पर नाटकों का सिलसिला वहां भी चलता रहा। मेडिकल का पेशा उन्हें अफ्रीका समेत कई देशों लेकर गया। वो सर्जन का काम करते रहे, लेकिन मन एक्टिंग में ही अटका था। और तब 42 साल की उम्र में उन्होंने थिएटर और फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और 1969 में वो पूरी तरह मराठी थिएटर से जुड़ गए।
And now that we are talking about the Bollywood actors who are known for their voices, Mukesh, मेरे पास दो ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी वॉइस की वजह से और जिनके डायलॉग्स की वजह से दे आर सो वेरी फेमस। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सुरेश ओबेरॉय, जिनका आज जन्मदिन है। हिज बर्थडे इज टुडे। हु इज एन इंडियन एक्टर एंड पॉलिटिशियन हु अपीयर्ड इन हिंदी फिल्म्स। ही इज अ रेसिपिएंट ऑफ द 1987 नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। ही स्टार्टेड हिज करियर इन रेडियो शोज, मॉडलिंग एंड लेटर मूविंग टू बॉलीवुड, मेकिंग हिम अ पॉपुलर कैरेक्टर एक्टर इन द 1980s एंड मच ऑफ द 1990s। तो पहले हम क्यों ना यहाँ पे एक गाना सुन ले जो उनके ऊपर फिल्म आया हुआ है।
किस नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किस नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार।
And now that we have heard this song, why don't we also listen to one of his dialogues, because he is so very well known for his voice and his dialogues. Suresh Oberoi.
प्यार के दो बोलों ने तुम्हारे कानों से चीखों की वो गूंज छीन ली जो तुम्हारी रातों की नींद उड़ा दिया करती थी। तुम ये भूल गए, जिसे तुम अपनी आंखों का उजाला समझ रहे हो, तुम्हारा अपना नहीं। इस काले चश्मे के पीछे किसी मासूम बच्चे के लहू से जलते हुए चिराग हैं। तुम अपना कर्तव्य, बचपन में दिया हुआ वचन सब भूल गए। कुरुक्षेत्र के मैदान में जाने से पहले एक बार फिर तुमने अपना कवच खो दिया है करण।
एंड द सेकेंड एक्टर मुकेश, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो है विजू खोटे, जिनके एक डायलॉग ने उनको इतना फेमस बना दिया कि हम आज तक उस डायलॉग को बार बार सुनते हैं और उस मूवी को भी हम बार बार देखते हैं, और शायद आपको पता चली गया होगा।
बिल्कुल बिल्कुल।
सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवी शोले एंड लेट्स लिसन इन टू दिस ब्यूटिफुल डायलॉग।
अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर?
पूरे 50,000।
सुना, पूरे 50,000।
तेरा क्या होगा कालिया?
सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
अब गोली खा।
और अब हम याद कर रहे हैं दिल्ली घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उस्ताद इकबाल अहमद खान को। उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत का अद्भुत ज्ञान था। आज उनकी पुण्यतिथि है। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली घराने को आगे बढ़ाने के लिए कई शिष्यों को निःशुल्क संगीत की तालीम भी दी थी। उस्ताद इकबाल अहमद खान भारतीय शास्त्रीय संगीत की विभिन्न शैलियों, ठुमरी, दादरा, गजलें और भजन के लिए पहचाने जाते हैं। उन्हें साल 2001 में प्रदर्शनी पुरस्कार और साल 2003 में राजीव रतन सद्भावना पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो क्यों ना उनका एक गायन सुन लिया जाए। आज ही जयंती है क्रांतिकारी लेखक, इतिहासकार और पत्रकार सखाराम गणेश देउस्कर की। ये भारतीय जनजागरण के ऐसे विचारक थे जिनके चिंतन और लेखन में स्थानीयता और अखिल भारतीयता का अद्भुत संगम था। ये लोकमान बाल गंगाधर तिलक के पक्के अनुयायी थे और बंगाल में जनजागृति लाने के कारण ये बंगाल के तिलक कहलाते थे। हिन्दी के प्रचार के लिए भी इन्होंने निरंतर प्रयास किया था। और हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र की आज जयंती है। हिंदी के एकांकीकारों में उनका विशेष स्थान है। उन्होंने प्रचुर मात्रा में गद्य तथा पद्य दोनों में साहित्यिक सृजन किया था। और आज ही जयंती है हिंदी के प्रसिद्ध कवि रहीम यानी अब्दुल रहीम खाने खाना की। अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे।
And today is the birthday of John Abraham, who is an Indian actor and film producer who works in Hindi films, known for his stoic action hero persona. He's a recipient of a National Film Award along with nominations for 4 film awards. There is so much to talk about John Abraham yahan pe Mukesh par. Let's listen into this beautiful song from the movie Saya.
Ae meri zindagi tu mere saath hai. अब मुझे इस जमाने की परवाह नहीं, जान ले लूं भी मैं, जान दे दूं भी मैं, जान ले लूं भी मैं, जान दे।
तो रेणु, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज का आज सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाए, तो अनुमति दें मुकेश कुमार रेणु कटारिया को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। लेकिन आप सुनते रहें आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल।
जी, फॉर ट्यून्ड अप, स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार प्रभात एंड आफ्टर दैट द मॉर्निंग न्यूज एंड हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।